धवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर 2 ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम श्रुतात्मने नमः नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायां नमो लोए सौवसां मुनिसो वयदेशयरं पणमिय मुनिसो वयं जिनं देवं संकममनोगमिनं जहासु अम्बन्नैस्सामो। आचार्य श्री विंसे स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो शेष 18 युनुक द्वारों की चर्चा चल रही थी अपनी 15वीं पुस्तक से, उसमें से ये संक्रमण योग द्वार चल रहा है और 16वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 342 पर हम आ गए, 342। यहाँ तो संक्रम भी प्रकृति संक्रम, प्रदेश संक्रम, स्थिति संक्रम, अनुभाग संक्रम की अपेक्षा होगा, यहाँ तो प्रकृति संक्रम की बात अपनी चल रही है। यानी किसी प्रकृति का अन्य प्रकृति में कुछ परमाणु पूरे के पूरे भी हो सकते हैं, परंतु पूरी होनी चाहिए ऐसा नहीं, उसमें वो टर्न होते हैं तो उसमें बंध की अपेक्षा आती है, यानी बंधने वाली में संक्रमित होता है। उसके स्वामी की बात हमने देखी थी, किसका संक्रमण है नहीं है वगैरह बात देखी थी। अब काल की प्ररूपणा चल रही थी, हम दोबारा पढ़ते हैं उसको, वहां से लेते हैं। एक जीव की अपेक्षा काल, यानी किसी प्रकृति का संक्रम होता रहे तो कितने काल तक होता रहेगा, तो कहते 5 ज्ञानावरणियां, ये पांचों बंधने वाली है और पांचों का एक में संक्रमण होगा। कब से चल रहे थे? अनादि से। कब तक चलता रहेगा? 10वें तक चलेगा। 9 दर्शनावरणीय, 25 मोहनीय। अभी 9 दर्शनावरणीय मुझे उसके बंध स्थान देखना, 9 का बंध होगा या 6 का होगा, 4 का, इस तरह से। 25 मोहनीय, उद्वेलित न की जाने वाली सब नाम प्रकृतियां, उद्वेलित करने वाली जो होती है उसकी हमने देखी थी, देवद्विक, आहारद्विक, देवद्विक, नरक चतुष्क और मनुष्यद्विक, उद्वेलना होने वाली नाम कर्म की देखी थी हमने 10। बाकी जो 3 होती है वो सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और उच्च गोत्र, सम्यक प्रकृति, मगर वो नाम कर्म की नहीं है। टोटल उद्वेल ना होने वाली 13 होती है, सम्यक प्रकृति, सम्यक मोहनीय और उच्च गोत्र। उसकी बात यहाँ नहीं ली, यहाँ नाम कर्म की बात चल रही है। तो इनका जो 5 अंतरा, इनका संक्रमण काल कितना है? तो अनादि से चल रहा है संक्रमण का काल, अनादि अपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित, यानी अनादि शांत और सादि सपर्यवसित भी है। सादि शांत क्योंकि 10वें के बाद नीचे आता है तो फिर चालू हो जाता है, या दर्शनावरण में जो बंध स्थान अलग अलग है उसकी अपेक्षा भी देखना है। इनमें जो सादि सपर्यवसित है उसका प्रमाण जघन्य से अंतर्मूर्त, क्योंकि शादी कब हुई शुरुआत? 11वें में नहीं था, 10वें में आने पर शुरू हुआ शादी हुआ। फिर अंत कब होगा? दोबारा 11वें में जाएगा या श्रेणी चढ़ के 12वें में जाएगा तो अंत होगा। और उत्कर्ष से उपार्द पुद्गल परिवर्तन, एक बार श्रेणी चढ़ के आया है नीचे, अर्ध पुद्गल परिवर्तन में तो क्षपक श्रेणी तो चढ़ने ही वाला है, तो ये तो समझ में आवे ऐसी बात है। साता व असाता वेदनीय के संक्रमण का काल जघन्य से एक समय उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है, क्योंकि इसका जो परावर्तमान है प्रकृति, तो कभी उदय भी परावर्तमान है और बंध भी परावर्तमान है, इसलिए उसकी अपेक्षा से उसमें मैक्सिमम तो अंतर्मूर्त तक ही उसका संक्रमण होगा। और इसका भी संक्रमण कहाँ तक बताया, तो सकशाय तक, दसवें तक, क्योंकि सातावेदनीय का बाद में अधिक से उदय उदय कितने काल तक रहेगा सातावेदनीय का, हाँ यानी तेरहवें गुणस्थान का काल पूरा हो सकता है साता का ही, परंतु उसमें संक्रमण नहीं है। अभी आगे मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रमण का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से कुछ अधिक 2-66 सागरोपम मात्र है। विशेष इतना है कि वह मिथ्यात्व का वह काल साधिक, ये दो कैसे हो सकता है? देखो सम्यक मिथ्यात्व का तो 2-66 सागर होगा, क्यों? जब सम्यक तो प्राप्त किया तो 1-66 सागर तक अंतर्मूर्त कम तक तो सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति रूप होते रहता है, यानी सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है। वो जीव जब मिथ्यात्व में आता है, एक अंतर्मूर्त या थोड़े ज्यादा काल के लिए वो मिथ्यात्व में आया, वहां सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व रूप से संक्रमित हुआ, फिर उसने सम्यक तो प्राप्त किया और 1-66 सागर तक रहा, तो उसमें तो 2-66 सागर हो गए, मिथ्यात्व में 2-66 सागर कैसे हो गए? 66 सागर ही हो सकता है, कुछ कम नहीं, ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, केवल सम्यक दृष्टि के ही मिथ्यात्व का संक्रमण है। वो औक्षमिक सम्यक तो सहित औक्षमिक सम्यक तो किया और क्षायिक भी किया, तो उसका 66 सागर से अधिक होगा, दो नहीं हो सकता। ऊपर क्या लिखा देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन नीचे से वो आया था ना, उक्कस बे छावट्टी सागरोमानी साधिरिणी नवरी, यानी परंतु मिच्छत्तस छावट्टी सागरोम साधिरी, यानी देखो दो छावट्टी नहीं लिखा, यानी बे छावट्टी नहीं लिखा, अकेला छावट्टी लिखा, यानी एक ही 66 सागरोपम, मैंने यानी साधिक 66 सागरोपम करो, दो शब्द निकाल दो यहाँ से नीचे हिंदी में से। अरविंद भाई एक जो की अपेक्षा काल है नीचे से दूसरी लाइन, वो नहीं, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नीचे से दूसरी लाइन, मिथ्यात्व का उन्होंने एक ही 66 सागरोपम होना चाहिए, उन्होंने 2-66 सागरोपम लिखा। साधिक कैसे होगा, तो उपशम का काल और 66 का पूरा काल, क्योंकि वही रहते हुए वो मिथ्यात्व है वो अन्य रूप संक्रमित होकर नष्ट होने वाला है, तो पूरा 66 सागर वहां मिलेगा और उपशम सम्यक का अंतर्मूर्त अधिक मिलेगा, इस तरह से उसको देख सकते हैं। मिथ्यात्व का संक्रमण किसमें होगा, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में, अंतर्मूर्त तक ही सम्यक में रहा तो अंतर्मूर्त तक ही संक्रमण हुआ, या नीचे मिथ्यात्व में आया, कहीं पर भी ले सकते, संक्रमण नहीं हुआ। सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण सम्यक दृष्टि के भी और मिथ्या दृष्टि के भी है, क्योंकि मिथ्यात्व में आने पर उसका उल्टा संक्रमण हुआ था, सम्यक्त्व में रहा तब सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति में संक्रमित हुआ, मिथ्यात्व में आए तो सम्यक मिथ्यात्व में से मिथ्यात्व में संक्रमित हुआ और फिर वो सम्यक दृष्टि हुआ, तो 2-66 सागर उसमें घटित होते हैं। मयंक भाई को भी वो करेक्शन बताना है, 342 कल हमने पढ़ा था और फिर हम रुक गए थे बीच में ही, और कल भी वो कन्फ्यूजन में रहा ना, 2-66 उन्होंने लिखा ना, परंतु विशेष इतना है कि, यानी वो वाक्य में भी ट्रांसलेशन में भी विशेष क्या बताया, वहां पर भी 2-66 सागर यहाँ पर भी 2-66 सागर, वैसा दो शब्द निकालना चाहिए था। विशेष इतना है कि मिथ्यात्व का वह काल साधिक 66 सागरोपम मात्र है, वो दो निकाल दो वहां से नीचे से दूसरी लाइन उस पैराग्राफ की, तीसरी लाइन में वो बराबर है, तीसरी लाइन में पहले में पहले दोनों में मिलकर कथन किया, फिर मिथ्यात्व के लिए नहीं, यानी सम्यक मिथ्यात्व के लिए साधिक 2-66 होगा और मिथ्यात्व के लिए केवल 1-66 सागर, आगे हो सकता है मिथ्यात्व में साधिक ज्यादा कैसे होगा बोलो।
दो छाछठ हो जाएगा,
दो छाछठ में क्यों मिथ्यात्व का अधिक बोलो कैसे होगा, तो छाछठ से ज्यादा रहता नहीं है। ऑप्शन का कर लिया, उपशम सम्यक तो और वेदक सम्यक, वेदक सम्यक तो में अधिक से अधिक 66 सागर तक रह सकता है। पूरे 66 सागर तभी गिनते हैं जब वो कृत कृत्य वेदक होकर क्षायिक हो जाता है, तो क्षायिक के काल में भी उसने मिथ्यात्व का संक्रमण तो कर ही दिया ना, सर्व संक्रमण से नष्ट हुआ था। कुछ अधिक दो, परंतु वो दोनों के लिए कॉमन कथन किया, फिर विशेष इतना है कहकर मिथ्यात्व को अलग। हाँ
कुछ अधिक, अधिक में हम लोग ये औपचमिक और सार्वजनिक
नहीं नहीं, वो तो 66 के लिए आ गया, परंतु वो सम्यक मिथ्यात्व का तो उल्टा संक्रमण भी हुआ ना। कब? मिथ्यात्व में आने पर, तो वो अंतर्मूर्तियां थोड़ा ज्यादा वहां बिताए और फिर 66 सागर तक वो सम्यक दृष्टि रहा, इसलिए वहां दो 66 सागर हो जाते हैं। आप कहेंगे पल्ले के असंख्यात विभाग रखकर फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त करो, परंतु वो दो 66 सागर उसने लिमिट बताई तो इतना ही हो सकता है, क्योंकि मूल कथन जो है उससे तो एक्सीड नहीं होगा। अब सम्यक प्रकृति के संक्रमण का काल, जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से पल्लोकम के असंख्यात विभाग मात्र है। प्रेरणा बिन आपको बताना है सम्यक प्रकृति का संक्रमण कब होगा। नहीं, मिथ्यात्व में सम्यक प्रकृति कहाँ उद्वेलना है, मिथ्यात्व में सम्यक दृष्टि है तब तक सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं है, उसमें मिथ्यात्व आ रहा है। नहीं समझे, यहाँ 16वीं पुस्तक चल रही है आपके पास है क्या? हाँ देखो, ये दर्शन मुनि की बात चल रही है। मिथ्या दृष्टि उसने सम्यक को प्राप्त किया, औषमिक हुआ तब से मिथ्या तो एक प्रकृति थी, तो उसके साथ मिथ्या तो में से पेज नंबर है 342 उसमें है 342, शुरुआत में 338 से शुरुआत है, 342 पर आ गए हैं। मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व और उसमें से सम्यक प्रकृति, जब तक सम्यक दृष्टि है भले औपशमिक हो या क्षौपशमिक हो उसका संक्रमण चल रहा है। मिथ्यात्व का भी संक्रमण हो रहा है, सम्यक मिथ्यात्व का भी संक्रमण हो रहा है। अब मिथ्या दृष्टि के क्या हो रहा है जब वो मिथ्यात्व में है? देखो, तीसरे और दूसरे में कोई संक्रमण नहीं है किसी भी प्रकृति का, न तीसरे गुणस्थान में है न दूसरे में है। मिथ्यात्व गुणस्थान में क्या होता है? सम्यक प्रकृति है, अभी ऐसा लेना सम्यक मिथ्यात्व में उद्वेलना, उसको उद्वेलना संक्रमण ही कहते, उसको संक्रमण नहीं नाम है। ये मिथ्यात्व में यानी या तो मिथ्या दृष्टि के या सम्यक दृष्टि के दर्शन मुनि के संक्रमण होगा। किसका किस में होगा? सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का भी होगा, सम्यक मिथ्यात्व का भी होगा। मिथ्या दृष्टि के सम्यक प्रकृति का भी होगा और सम्यक मिथ्यात्व का भी होगा। अभी हम काल यहाँ देख रहे हैं, सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण का काल, जब तक वो सम्यक्त्व में रहेगा तो पूरा 66 सागर रहता है तो क्षायिक हो जाता है, तो उसमें अंतर्मूर्त पहले वो या तो तीसरे में जाएगा या पहले में जाएगा। तीसरे में जाएगा तो संक्रमण रुक जाएगा, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण यहाँ हो रहा था। ये जीव मिथ्यात्व में आया, अंतर्मूर्त में उसका संक्रमण किया उल्टा और फिर सम्यक दृष्टि हुआ और फिर 66 सागर तक रहा, तो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण दो 66 सागर बताया। मिथ्यात्व का संक्रमण कब होगा? केवल सम्यक दृष्टि के होगा। वो कितने तक होता है? तो 66 सागर, उपशम सम्यक्त्व का काल उसमें ऐड कर दो तो साधिक 66 सागर। अब सम्यक प्रकृति का संक्रमण कब होगा? सम्यक दृष्टि के नहीं है, तीसरे वाले की नहीं है, दूसरे वाले की नहीं है। तो सम्यक प्रकृति का संक्रमण कहाँ है? मात्र पहले गुणस्थान में, जिसको हम उद्वेलना कहते हैं। तो उद्वेलना पूरा होने के लिए कितना काल लगता है? पल्ल का संख्या होगा वो उद्वेलना संक्रमण। उसके पहले अधप्रवृत्त संक्रमण होता है अंतर्मूर्त तक, वो भी उसके संक्रमण में ही गिनेंगे हम। यानी पूरा मिथ्यात्व में आने से लेकर पल्ले के असंख्यात्व भाग काल में उसका उल्टा संक्रमण चलता रहेगा। मैक्सिमम हमको देखना है, मिनिमम अंतर्मूर्त करके फिर सम्यक दृष्टि होगा, तो मिनिमम अंतर्मूर्त भी हो सकता है। ये ख्याल में आई? तो सम्यक प्रकृति के संक्रमण का काल, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, काल जघन्य से अंतर्मूर्त मिला और उत्कर्ष से पल्लवभूम के असंख्यात भाग है। अभी आई हो तो उसके उसी लाइन में जो करेक्शन है, तीसरे नहीं, नीचे से दूसरी लाइन उस पैराग्राफ की देखो। मिथ्यात्व का वह काल साधिक दो छासर सागरोपम लिखा, वो साधिक छासर सागरोपम चाहिए, दो काढ़ और उसके लिए प्राकृत का रेफरेंस ऊपर अंडरलाइन करना, प्राकृत में नीचे से पांचवी लाइन लास्ट में आधी लाइन के बाद नवरी मिला, मिच्छत्तस छावट्ठी सागरो साधिरी, यानी तो वहां बे छावट्ठी नहीं लिखा, खाली छावट्ठी लिखा, इन्हें करेक्शन हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो जो ज्ञानावरणादि है उनका संक्रमण आपस में, संक्रमण में कंडीशन क्या देखी थी? बंद होना चाहिए। ज्ञानावरण पांचों का बंध पहले गुणस्थान से दसवें तक होता है, तो दसवें गुणस्थान तक उसका आपस में संक्रमण होगा। ग्यारहवें में गया तो संक्रमण रुक गया, वापस दसवें आया तो संक्रमण चालू हो गया, क्योंकि बंध की कंडीशन है। इसलिए जो ध्रुव बंदी है, जो बनती रहती है, तो उनके लिए वो तो अनादि से चल रहा है। और कब मिटेगा? दसवें में आने तक चलेगा, ग्यारहवें में गया तो मिटेगा। और को अगर श्रेणी नहीं चढ़ेगा तो अनादि अनंत भी चलेगा कोई किसी की जीव का, और श्रेणी चढ़ने वाले का अनादि शांत होगा। एक बार श्रेणी चढ़ के उतरेगा तो शांति हो जाएगा, दोबारा श्रेणी चढ़ेगा तो शांत हो जाएगा। इस तरह से उसके काल हमने देखे थे। अब आगे बढ़ते देखो, अब राम कर्म की कुछ प्रकृतियां वो बताए रहे। नरक गति, देव गति, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक बंधन, वैक्रिक संघात, नाम कर्मों के संक्रमण का काल जघन्य से साधिक आठ वर्ष या अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 2000 सागरोपम मात्र है। अश्विन में बताएंगे कैसा? क्या 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 क्या
देवगति नहीं, संक्रमण होता है देवगति होता
है, इनका संक्रमण होना चाहिए, इनमें संक्रमण नहीं, इनका संक्रमण।
आठ वर्ष के लिए देवगति का संक्रमण होना चाहिए मनुष्य गति में।
हाँ, बनने वाले में संक्रमण होता है
तो मनुष्य में वो आठ वर्ष तक रहा और सपक श्रेणी चढ़कर एक इंद्रिय से पंचेंद्री में आया, देवगति का बंध किया और आठ वर्ष पे उसके सपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष चला गया, ऐसे ही होगा ना?
ना ना, देखो देखो,
देवगति का संक्रमण मनुष्य में होगा।
हाँ, देवगति का संक्रमण जो है
मनुष्य एक्सपीरियंस में होगा,
देव में क्यों नहीं होगा?
देवगति बन रही है तो देवगति का संक्रमण,
देवगति का बंध नहीं है इस,
तो देवगति का बंध नहीं है नहीं, पर ये आठ वर्ष के लिए एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में आया और आठ वर्ष पे सप्तक्षरी चढ़कर,
हाँ देखो मिनिमम बताया ना,
हाँ मिनिमम आठ
वर्ष जघन्य से साधिक आठ वर्ष या अंतर्मूर्त,
या साधिक आठ वर्ष में आठ वर्ष के पश्चात वाला जो ग्यारह अंतर्मूर्त थे वो लेना है?
साधिक आठ वर्ष या अंतर्मूर्त बताए, दो दो ऑप्शन बताए उन्होंने। एक मिनट, अठवस्सा साधेरिया अंतमूर्तम व एक केंद्र में बंद नहीं था, यानी सत्ता बिना का आया जीव। हाँ, पंचेंद्रिय में आया, सम्यक तो प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी? मनुष्य देखो बंध, उसका संक्रमण हो रहा है, यानी या तो मनुष्य गति, तिरंज गति या नरगति बंध रहा है तो देवगति का संक्रमण होगा। अन्य यानी अन्य गति का बंध है तब उसका संक्रमण होगा। पर किसी एक मिथ्या दृष्टि है तो किसी एक गति का बंध काल तो अंतर्मूर्त है। नापन जो अपनी स्वयं का उसका बंध हो रहा है, स्वयं का बंद हो रहा है तब तक वो संक्रमित नहीं होगा, संक्रमित नहीं होगा। वो तो ठीक है, इसलिए अथवा अंतर्मूर्त कहा। अंतर्मूर्त किसके लिए? नहीं नहीं सम्यक तो प्राप्त करने की अपेक्षा से वो अंतर्मूर्त तिर्यंच में आप कहते वैसा हो सकता है। हाँ, उन्हें सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक तो प्राप्त किया तो देवगति का ही बंद करता रहा। वही तो कहो, यानी देवगति का ही बंद करता है, परंतु वो तो नरगति का तो संक्रमण कर सकता है ना उस समय। पर वैकृत क्यों पन देव गति चारों गति का आपस में संक्रमण है। एक जो बंधने वाली है, पर मनुष्य गति में भी बांध रहा है, तिर्यंच गति भी बांध रहा है, तो उसमें संक्रमण होगा। पर अंतर्मूर्त में कंटिन्यूस होगा ना, क्यों अंतर्मूर्त क्यों किया फिर? मनुष्य गति के बाद तिर्यंच गति भी तो बांध रहा है, उसमें भी चला जाएगा ना। कंटिन्यूस हो सकता है, क्योंकि आइदर मनुष्य गति या तिर्यंच गति तो बंद ही रही है, तो उसमें संक्रमित तो होता ही रहेगा। यानी उद्वेलना के बाद आया हुआ जीव होना चाहिए ये। आगे पढ़ते थोड़ा कुछ उसमें आएगा, तो फिर से पढ़ते हैं। नरक गति देवगति, नरक गत्यानुपूर्वी देव गत्यानुपूर्वी, ये सब वैकिरिक शरीर, वैकिरिक शरीर अंगोपांग, वैकिरिक बंधन, वैकिरिक संगात, नाम कर्मों के संक्रमण का काल जघन्य से साधिक आठ वर्ष अंत, उत्कर्ष साधिक 2000 सागरोपम मात्र है। यानी त्रस में रहते हुए वही मैं आपसे पूछ रही आप आगे देखते कुछ होगा, उसका उकेल मिल जाएगा।
मेरे तो इसी ख्याल में आता है, एक इंद्रिय से आया, बंद किया, संक्रमण चालू हो गया, 8 साल के बाद वो मुक्त चला गया, तो 8 साल के लिए उसका संक्रमण चला, क्योंकि उसका बंद हो गया। तो
और अंतर्मूर्त क्यों कहा?
अंतर्मूर्त तो अंतर्मूर्त के लिए 8 साल के लिए ये घटित होता है, पर अंतर्मूर्त मेरे को ध्यान नहीं आया, क्योंकि एक बार बंद हो गया तो उसका तो संक्रमण चलेगा। एक बार बंद हो गया ना कि ये सारे नरक गति या देवगति का, तो सत्ता में पड़ा रहता है।
देखो देखो, वैकृत शरीर अंगोपांग वो तो समझ में आया, देवगति वगैरह बांध ही रहा तो उसका संक्रमण नहीं होगा, उसका संक्रमण नहीं होगा। देवगति बांध रहा है तो देवगति में संक्रमण होगा। जब सम्य दृष्टि होगा तो उसका बंध रुक गया, यानी संक्रमण रुक गया, बंध नहीं, बंध तो चालू है। देवगति वैकृत शरीर अंगोपांग वगैरह का बंध चालू है, बंध चालू है तो उसका संक्रमण नहीं होगा, बंधने वाले में संक्रमण होता है। हाँ, सम्य दृष्टि को देवगति में वैकृत अंगोपांग में संक्रमण होगा, किसका? अन्य का। समझ में आती है बात? जो बंध रही है उसमें संक्रमण हो रहा है, तो सम्यक तो होते ही उसका संक्रमण रुक गया, यानी 8 साल की अपेक्षा वो मोक्ष की नहीं लेना है, सम्यक तो प्राप्त करने के लेना है। मनुष्य में आया है सम्यक तो प्राप्त की, उसने 8 साल में किया, और वही अरविंद भाई बोल रहे तो 3 इंच में तो अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करता है, इसलिए अंतर्मूर्त 3 इंचों के लिए, जो समूर्छन 3 इंच अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करते हैं, तो देवगति का बंध चालू करेंगे तो देवगति का संक्रमण नहीं होगा, देवगति में संक्रमण होगा। 8 साल क्या ना, तो मनुष्य में आया है, बांधता है ना, तब तक तो उसका संक्रमण हो रहा था।
चारों गति
बांधता है, हाँ नहीं होगा,
तो वो 8 साल
आगे मनुष्य गति के भी लिए वही लिया। देखो जरा, मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी के संक्रमण का काल जघन्य से 8.5 वर्ष या अंतर्मूर्त, यहाँ पर भी वही बात ली। अब वो जो हमने बताया वो तो यहाँ घटित नहीं होगा। हाँ, मनुष्य गति का संक्रमण कैसे होगा? यानी वो समय दृष्टि वाला लेना, और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है, अभी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है ना, वो एक इंद्रिय में रहा, ये अर्थ होता है ना, तो एक इंद्रिय में रहते हुए मनुष्य गति का बंद कर रहे, तब क्या, या तो तीर्यंच गति या मनुष्य गति तो बंद रहे, और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक मनुष्य गति का संक्रमण कैसे फिर बताया, वो भी कैसे घटित कर रहे हैं? पूरे आगे हम अंतर वगैरह की बात देख के फिर आगे देखते हैं।
ठीक है, ये बात जाना करते हैं, इसको तो कंटिन्यूस बनता है, तो उसका संक्रमण अलग ही अलग काल तक करता है,
तो आपस में बनते हैं।
हाँ,
आपस में जाते हैं। पांचों एट ए टाइम बन रहा है। बंधने वाले में संक्रमण, ये जो कंडीशन वो कैसे होगी? ख्याल में नहीं आ रहा है। स्वामित्व में देख लो जरा, यश कीर्ति को छोड़कर शेष सभी नाम कर तब तक संग्रह जब तक ही जीव सकसा है और जब तक उनका सत्कर्म आवली के बाहर रहता है। अच्छा, नहीं उसमें गति में ही संक्रमण होना चाहिए ऐसा नहीं है, कहीं पर भी संक्रमण होगा, यानी नाम कर्म में आपस में संक्रमण होगा, बंधने वाले में संक्रमण होगा। मनुष्य में कैसे होगा?
मनुष्य में उससे एक बार देवगति और प्रभु दिन तक बंदी गई सत्ता थी,
इन्हें बंधने वाले उसको गति का बंध होता है कि नहीं वो नहीं देखना है। जैसे नाम अभी हमने बताया, नाम कर्म के सभी का तब तक संक्रमण होता है जब तक की जीव सकसा है, यानी उसकी बिना सत्ता वाला जीव लेना, बिना सत्ता वाला जीव लेना और उसकी सत्ता हुई 8 वर्षन में उसने सकसाय से अकसाय हो गया, फिर अंतर्मूत क्यों कह रहे हैं? नहीं, अंतर्मूर्त इसलिए कि श्रेणी से उतर कर फिर श्रेणी चढ़ा, इसलिए शादी शांत वाला, यानी इसका, क्योंकि मनुष्य गति के लिए भी वही बात ली है 8 वर्ष में, यानी उसके सत्ता बिना लेना जीव उद्वेलना करके सत्ता रहित हुआ था। देव और नारकी के लिए कहीं पर एक इंद्रिय में गया था। देखो इन्हें, ये जो प्रकृति है ना, इनकी सत्ता रहित जीव मनुष्य में आया, अभी या एक इंद्रिय मनुष्य द्विक के लिए पंचेंद्रिय होकर मनुष्य में आया, इस तरह से लेना पड़ेगा। पंचेंद्रिय में या मनुष्य में डायरेक्ट आया, मनुष्य में आया, बंध किया, यानी अभी उसका बंध किया तो बंधावली के बाद उसका संक्रमण चालू हो जाएगा, तो संक्रमण शुरू और 8 वर्ष में उसने श्रेणी चढ़ी। पूरा मोक्ष क्यों भेजते हो? उपशम श्रेणी चढ़े तो भी बात घटित होती है। 11वें में गया तो उसका बंध रुक गया, यानी संक्रमण रुक गया, अभी नरक गति के लिए तो वो तो नौवे गुण स्थान में उसका संक्रमण से वो क्षय हो जाता है, वहां तक लेना उसका। देव गति वगैरह के लिए तो उसका दसवें तक ही संक्रमण है, संक्रमण ऊपर नहीं है, इसलिए आठ वर्ष है। और दो बार श्रेणी के बीच में अंतर्मुक्त और कहे ना, यानी गति के लिए गति में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नाम कर्म की जो कुछ बंधने वाली है उसमें उसका संक्रमण होता है। नाम कर्म के लिए गति जाति का उसी ग्रुप में संक्रमण होगा, ये जरूरत नहीं है। नाम कर्म की जो कुछ बंध रही है उसमें संक्रमण होगा, इससे ये बात सिद्ध होती है। हमने देखा ना कि आठवें गुणस्थान में यश कीर्ति का बंध चालू रहता है, पर दसवें गुणस्थान तक यश कीर्ति में संक्रमण होगा, बाकी सभी का जो वहां मौजूद है उसके, जिसकी सत्ता है, और बाद में वो भी संक्रमण दसवें के आगे नहीं चलता है। आगे तभी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन यहाँ घटित होता है। यानी इतने अंतर देखकर फिर वो उसकी सत्ता नष्ट भी हो जाएगी, अग्नि का एकादि में ही चला जाएगा, इसलिए असंख्यात पुद्गल परिवर्तन ले लिया। उच्च गोत्र के संक्रमण का काल जघन्य से अंतर्मूर्त, क्योंकि उच्च गोत्र का संक्रमण कब होगा, जब नीच गोत्र बंद रहा है, अंतर्मूर्त यानी मिथ्यात्व में रहने का अंतर्मूर्त काल लेना, क्योंकि पहले और दूसरे में ही गोत्र बनता है नीच गोत्र। उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम मात्र है, नरक नारकी मिथ्या दृष्टि, साधिक लिया ना, वहां से निकल कर भी वो मिथ्या दृष्टि रहा। हाँ, नीच गोत्र का ही बंद कर रहा था, आते समय भी नीच गोत्र का बंद कर, बाद में उच्च गोत्र का बंद हो सकता है। आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघात के संक्रमण का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से पल्यपुंग के असंख्यातवें भाग मात्र है। जो अंतर्मूर्त है वो श्रेणी के बीच में, मैंने दो श्रेणी के बीच में, और जो पल्ले का असंख्यातवा भाग है वो उसका उद्वेलना काल लेना। उद्वेलना काल ऐसा नहीं लेता है, जब तक वो सम्य दृष्टि रहा तब तक उसका संक्रमण नहीं होगा। ननानस आहार की सत्ता वाला है और सम्य यानी वो तो मुनिराज है, बोले वो चौथे में आए तो भी, यानी देव में गए तो भी आहार की सत्ता तो रहेगी, पर उसकी उद्वेलना मिथ्यात्व में जाने पर ही होगी ना, कि चौथे में भी होगी। उद्वेलना का स्वामी जरा देख लेते हैं बाद में। तीर्थंकर नाम कर्म के संक्रमण का काल, वही इसीलिए वो आहार का उद्वेलना करने वाला कौन जीव है। मिथ्यात्व में जाना चाहिए ना उसको, एक मिनट आहार का कौन उद्वेल ना करता है उसकी बात हमको देखनी है। उद्वेलना की 13 है परंतु उसको करने वाला जीव कौन कौन है? क्या कहते नहीं, केवल एक इंद्रिय नहीं, मिथ्या दृष्टि को भी होगा ना। किस कितने का संक्रमण उद्वेलना है, बस इतना ही है। कहीं पर भी होता है। उसमें उनका कहाँ होता है ये बात लिखी नहीं है। चलो आगे जरा बढ़ते हैं। देखो, तीर्थंकर नाम कर्म के संक्रमण का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरूपम मात्र है। तो तीर्थंकर प्रकृति लेके गया है चौथे में ऊपर, तो उसका संक्रमण चालू है। तो आहारक का नहीं है, उसका अर्थ क्या है? समझ में है ना मेरा प्रश्न? समझ में है ना बात? निज गोत्र के ये जरा फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर। आहारक का संक्रमक इन्हें उद्वेलना करने वाला कौन होगा? नीच गोत्र के संक्रमण का काल जघन्य से अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त की उच्च गोत्र का बंद होगा, फिर नीच गोत्र का बंद होने लगेगा, और उत्कर्ष से 3 पल्लियों को अधिक 2/66 सागरों को। 3 पल्लियों को अधिक क्यों कहा? देखो भूभूमि में देवगति के साथ उच्च गोत्र ही बांध रहा है, और उसके अंत में जाके उसने सम्यक को प्राप्त किया। 266 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा तो उच्च गोत्र का ही बंद करता रहा। इसलिए इस प्रकार काल का कथन समाप्त हुआ। आगे बढ़े। अंतर, जिन कर्मों के संक्रम का काल तीन भंग रूप है, हमने देखा ना अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत, उनके संक्रम का अंतर काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मूर्त मात्र है। देखो ये कहां उनका संक्रम रुकता है, 11वें में। तो 11वें में जाकर एक समय के लिए रहा और मरकर देव हुआ, अंतर एक समय का हुआ। 11वें में अंतर्मूर्त रहा तो अंतर अंतर्मूर्त हुआ, यानी 11वें गुणस्थान की अपेक्षा। एक समय रहा तो एक समय अंतर हुआ। इसी प्रकार साता व असाता वेदनीय के विषय में कहना चाहिए, उसमें तो उसका बंध एक समय में पलट सकता है। उसका वैकृत षट का प्रकृत अंतरकाल जघन्य से एक समय, षटक का चाहिए करेगा। यह अंतरकाल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। यानी इतने अंतर तक उसने तो देवगति वगैरह उसकी सत्ता में थी ही नहीं, यानी उसने विद्वेल ना करके उसकी सत्ता में नहीं थे ऐसा जीव लिया। और एक समय होता है ना, पर ये ऐसा जीव लिया है, पर एक समय के लिए उसने मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी उच्च गोत्र और नीच गोत्र का वह अंतरकाल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है। यानी अग्नि का एक वायु का एक में उद्वेल न करने के बाद उसकी सत्ता में ही नहीं था, तो इतने काल तक उसने उसका संक्रमण हुआ ही नहीं। नीच गोत्र का भी बताया, क्योंकि नीच गोत्र का तब होता जब उच्च गोत्र बांध रहा है, इतने काल तक उसने बांधा ही नहीं है, उच्च गोत्र का बंधे नहीं होगा, इसलिए उसका वो संक्रमण भी नहीं होगा। और उच्च गोत्र तो उद्वेल ना करने के बाद असंख्यात लोक मात्र काल तक वो अग्निकायिक में ही रहा, उसके बंध ही नहीं हुआ, उसकी सत्ता में ही नहीं था, क्योंकि मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपुरी और उच्च गोत्र तीनों का एक साथ उसकी उद्वेलना होती है, यानी वो सत्व रहित हो जाता है। और इन पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात लोक, अन्य पर्याय में जाने के बाद वो फिर बांधेगा मनुष्य गति उच्च गोत्र वगैरह। आहार शरीर अंगोपांग, आहार शरीर बंधन और आहार शरीर संघात का अंतरकाल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र है। वही एक समय जो है वो तो इसमें लेना, श्रेणी में, यानी 11वें गुणस्थान में लेना। हाँ, उपार्ध पुद्गल, क्योंकि वो तो उद्वेलना वाली प्रकृति है, सत्ता में से नष्ट हो जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का अंतरकाल साता वेदनी के समान है, यानी एक समय से अंतर्मूल। एक समय 11वें गुणस्थान में, एक समय रहा या अंतर्मूर्त रहा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का वह अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त।
सत्ता तो
संक्रमण होगा नहीं होगा तो अंतर्मुद के लिए नहीं हो सकता, यानी उसका अन्य बंधने वाली जब तक है तब तक उसमें संक्रमण होता रहेगा। देखो देखो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का वह अंतरकाल, यानी सम्यक्त्व का जिसमें कहते कि उसका उद्वेलना पूरी हो गई, यानी सम्यक्त्व का संक्रमण कब होता है मिथ्यात्व में तब तक तो उत्कर्ष से उपादान पुद्गल परिवर्तन मिथ्यात्व के लिए भी यही है, उसका संक्रमण समय दृष्टि तब तक होता रहता है, मिथ्यात्व में रहने का बड़ा में बड़ा काल उपाद पुद्गल परिवर्तन होगा। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व का भी अंतरकाल जानना चाहिए, विशेष इतना है कि उसका वह अंतरकाल जघन्य से एक समय मात्र है। सासादन में देखो कोई सम्यक दृष्टि है तो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है, जब सासादन में एक समय के लिए रहा तो संक्रमण नहीं हुआ, वही जीव मिथ्यात्व में आया तो उल्टा संक्रमण चालू हो गया, पहले सम्यक प्रकृति में हो रहा था अभी मिथ्यात्व में हो रहा जाए। अनंतानुबंधी चतुष्क का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त, यानी जहां संक्रमण नहीं हो रहा ऐसा जीव लेना, और उत्कर्ष से साधिक दो छासर सागरूपम मात्र है। अंतर की बात है, हाँ क्योंकि जब तक सत्ता है तब तक उसका तो अन्य बदने वाली में तो संक्रमण चलता रहेगा, यानी विसंयोजना का काल ले सकते हैं, इसमें विसंयोजना में अंतर्मुहूर्त रहा और उत्कर्ष उत्कृष्ट से साधिक दो छासर सागर, यानी वो विसंयोजना करके दो छासर सागर काल तक रहा ऐसा ले सकते हैं ना, ख्याल में आई बात? समय दृष्टि हुआ विसंयोजना की और दो छासर सागर तक रहा ऐसा लेना ही चाहिए, और अंतर के लिए वापस मिथ्यात्व में लाना है उसको, इस प्रकार अंतर प्ररूपणा समाप्त हुई। अब 344 पेज पर आते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय का कथन करते हैं, उसमें अर्थपद जिन कर्मों का सत्कर्म है वे यहाँ प्रकृत है, यानी जिनकी सत्ता है उसकी बात करेंगे। इस अर्थपद के अनुसार 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, सम्यक मिथ्यात्व, 16 कषाय, 9 कषाय, 13 नाम प्रकृतियां, कौन सी वो क्षय होने वाली, नरक गति गत्यानुपूरी, तिरंज गति गत्यानुपूरी, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, जाति, स्थावर है, आतप है, सूक्ष्म है, साधारण है, आतप उद्योग दोनों है, तो ये प्रकृतियां और 5 अंतराय, इन प्रकृतियों के कदाचित सब जीव संक्रामक होते हैं, कदाचित बहुत संक्रामक व एक असंक्रामक, तथा कदाचित बहुत संक्रामक व बहुत असंक्रामक भी होते हैं। देखो सम्यक मिथ्यात्व को अकेले को लिया, यानी नाना जीवों की अपेक्षा कोई तो सम्यक समय दृष्टि है वो भी कर रहे हैं, और कोई वहां से मिथ्यात्व में आए वो भी कर रहे हैं, इसलिए कोई ना कोई करने वाले में ले ही लिया उनमें, इसलिए कदाचित में बताए सब सब होते हैं, कदाचित बहुत संक्रामक हो एक असंक्रामक, तथा कदाचित बहुत संक्रामक हो बहुत असंक्रामक भी होते हैं। बहुत ले लिया ना कभी कभी, वहाँ क्या पहले में पहले अर्थपद क्या बताया था, जिन कर्मों का सत्कर्म है वे यहाँ प्रकृत है। सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता होते हुए सारे संक्रमण कहने में पहले दूसरे और तीसरे में कोई जीव नहीं है ऐसा लेना है। नहीं, जिनकी सत्ता है ये महत्व का वाक्य है। और बाकी ज्ञानावरण वगैरह सत्ता होते हुए भी असंक्रामक कब करेंगे, ग्यारहवें में कहेंगे। साता असाता वेदनीय सम्यक्त्व मिथ्यात्व शेष नाम प्रकृतियां, ये 13 को छोड़कर शेष, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इनके नियम से बहुत संक्रामक व बहुत असंक्रामक भी होते हैं। क्योंकि संक्रामक कहाँ तक है, तो दसवें गुण स्थान तक। मिथ्यात्व का ग्यारहवें में होता है वो छोड़ दो, परंतु संक्रामक भी बहुत है और असंक्रामक भी बहुत है। हाँ, सत्ता वाले हैं ना सारे, क्योंकि जब तक उनका तो संक्रामक भी बहुत है असंक्रामक। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय समाप्त हुआ। अब नाना जीवों की अपेक्षा काल की प्ररूपना की जाती है। सब कर्मों के संक्रामकों का काल नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, सभी की बात है। सब कर्मों के संक्रामकों का अंतर नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों की विवक्षा है। क्या क्या? हाँ, उसका संक्रमण होगा ना, जिसकी सत्ता है उसका संक्रमण भी होगा। बंधने वाली अन्य नाम प्रकृतियां है ना, उसमें संक्रमण होता रहेगा। अल्पभूतों की प्ररूपना की जाती है, वह इस प्रकार है। आहार शरीर नाम कर्म के संक्रामक स्तोक है, क्योंकि वो बंधने के बाद जल्दी में जल्दी सबसे पहले में पहले उद्वेलना होने वाली प्रकृति आहार है। सम्यक्त्व के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। सम्यक्त्व के संक्रामक मिथ्या दृष्टि के जब वो उद्वेलना कर रहा है, चौथे पांचवे क्या बात है?
चौथे पांचवे वाले
क्यों
तो बंद हो गया
ना? किसका
की बात है ना?
अरे सम्यक प्रकृति की बात पढ़ी हमने, सेकंड पॉइंट सम्यक्त्व के संक्रामक असंख्यात गुण, ये हमने पढ़ा था। क्योंकि आहार शरीर बांधने जो जिनकी सत्ता है वो तो मुनियों ने बांधे हैं, तो सम्यक्त्व के संक्रामक असंख्यात गुण है, यानी वो जो सम्यक्त्व प्राप्त करके मिथ्यात्व में आया है ये जीव लिया। मिथ्यात्व के संक्रामक असंख्यात गुण है, यानी सम्य दृष्टि जीव है ये सर। सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक विशेष अधिक है, यानी वो सम्यक दृष्टि भी लेना और मिथ्यात्व में गए हुए जीव भी लेना। देवगति नाम कर्म के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। नरक गति के संक्रामक विशेष अधिक है, यानी वो एकेंद्रिय में गए हुए उनकी उद्वेलना करते रहेंगे। वैक्रियक शरीर के संक्रामक विशेष अधिक है, क्योंकि वैक्रियक शरीर देवगति के साथ भी है और नरक गति के साथ भी है। नीच गोत्र के संक्रामक अनंत गुणे हैं, क्योंकि संक्रामक कहने वो तो केवल जो सारे एकेंद्रिय भी उच्च गोत्र का नीच गोत्र का बंध कर ही रहे अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में, तो वो अनंत जीव उसको करेंगे। असाता वेदनी के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, सॉरी संख्यात गुणे, असाता वेदनी क्योंकि वो अनंत से संख्यात गुणा किया। सातावेन्य के संक्रामक संख्यात गुणे हैं, असाता से साता ज्यादा लिया क्योंकि असाता के बंद करने वाले ज्यादा हो गए शायद। उच्च गोत्र के संक्रामक विशेष अधिक है, मनुष्य गति के संक्रामक विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी के संक्रामक विशेष अधिक है, यश कीर्ति के संक्रामक विशेष अधिक है। आठों भी कषायों के संक्रामक विशेष अधिक है। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यांग बुद्धि और तेरह नाम प्रकृतियों के संक्रामक विशेष अधिक है। संज्वलन लोभ के संक्रामक विशेष अधिक है। नपुसक वेद के संक्रामक विशेष अधिक है। स्त्री वेद के संक्रामक विशेष अधिक है। छह नौ कषायों के संक्रामक विशेष अधिक है। पुरुष वेद के संक्रामक विशेष अधिक है। संज्वलन क्रोध के संक्रामक विशेष अधिक है। मान के संक्रामक विशेष अधिक है। माया के संक्रामक विशेष अधिक है। पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण लिखे है यहाँ तो। स्त्यांग वृद्धि त्रिक ले लिए ना पहले, सोलह नंबर पर निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला लिया था, यहाँ छो करना है। और हमने मूल में भी उसको निकाला था, नवदंशनावरण लिखा है क्योंकि तीन के बाद उन्होंने सोलहवे पॉइंट के बताई थी, तीन ज्यादा प्रचला और तेरह नाम प्रकृतियों के संक्रामक विशेष अधिक बताए थे। यहाँ छ लेना है और ऊपर भी प्राकृत में नव के बदले हमने छ किया था लास्ट टाइम, छह छह कैसे है, नौ में से तीन तो वो सोलहवे पॉइंट पर लिए थे, ये अभी हम पच्चीसवे पॉइंट पर हैं। पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, शेष नाम प्रकृतियों और पांच अंतराय कर्मों के संक्रामक तुल्य व विशेष अधिक है। इस प्रकार ओघ संक्रम दंडक समाप्त हुआ। शेष नाम प्रकृतियों जिनकी सत्ता है वो तेरह का तो क्षय हो चुका, नहीं 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 नौवे गुणस्थान में क्षय होने वाली, तेरह नाम प्रकृतियों के संक्रामक क्योंकि वहाँ सोलह प्रकृतियों का क्षय होता है, उसमें से तीन दर्शनावरण है और बाकी तेरह है वो नाम कर्म की। अभी गिनाई थी ना हमने, नरक गति है गत्यानुपूर्वी, तिर्यंज गति तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति है, फिर स्थावर है, सूक्ष्म है, साधारण है, आतप है और उद्योत, ये तेरह हो गए। आगे अभी ओघ में उन्होंने इन जनरल बता दिया, अब नरक गति में बता रहे हैं। आहार शरीर नाम कर्म के संक्रामक स्तोक है, सम्यक्त्व के संक्रामक हेलो रहेगा कितने काल तक, हेलो आया देखो नरक गति में हम देख रहे थे, आहारक के सबसे कम है जैसे ओग में भी थे, सम्यक्त्व के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, फिर मिथ्यात्व के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक विशेष अधिक है, निज गोत्र के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। उससे असंख्यात गुण है क्योंकि सम्यक्त्व का संक्रमण जो है पल्ले के असंख्यात भाग तक चलेगा और मिथ्यात्व का संक्रमण जब तक सम्यक्त्व में है तब तक चलेगा, और जीवों की संख्या चल रही है ना वो ज्यादा जीव होगी उसमें, समझ में आती बात। यानी पूरे लाइफ टाइम तक समय तो चल सकता है उनका, एक जीव की बात नहीं है ना, यह अनेक जीवों की बात। सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक विशेष अधिक बताए। नीच गोत्र के संक्रामक असंख्यात गुण है, क्योंकि जब जब उच्च गोत्र बन रहा है तब तक नीच गोत्र का संक्रमण चलता रहेगा। असाता वेदनीय के संक्रामक संख्यात गुण है। देखो बीच में देवगति नरगति जो लिखा था हमने, उसकी तो बात यहाँ नहीं होगी, वो एकेंद्रीय जीव उसको संक्रमण करते हैं, इसलिए उसको यहाँ छोड़ दिया ओग में। नीच गोत्र के बाद असाता के संख्यात गुण का, साता वेदनीय के संक्रामक संख्यात गुण है, उच्च गोत्र के संक्रामक विशेष अधिक है, साता वेदनीय से विशेष अधिक है। अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक विशेष अधिक है।
देवगति का बंधक क्या है, वो नरक से जा सकता है
क्या? क्या
देवगति का बंधक क्या है, बंधक जो है वो नरक से जा।
हाँ,
तो नरक में देवगति का संक्रमण
सत्ता में है तो संक्रमण चलेगा ना। अच्छा, देवगति को नहीं लिया ऐसा कहते आप, देवगति का संक्रमण यहाँ नहीं है ऐसा बता रहे आप। शेष कर्मों में आ जाएगी ना वो, अनंतान में चतुर्थ हेलो 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 आपका सुनता है ना, भाषा वर्ग में आपका दोस्त है। अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक विशेष अधिक है और शेष कर्मों के संक्रामक तुल्य व विशेष अधिक है। उसमें सबको पटा दिया। हाँ, वहाँ ओघ में इसलिए उनकी संख्या कम थी, आगे बहुत्वक में नहीं लिया है, क्योंकि जब उसकी उद्वेलना होती है तो वो संक्रमण रुक जाता है, तो एकेंद्रियों में उनको संक्रमण नहीं करने वाले जीव बहुत हो गए, इसलिए अल्प की ओर उनको रखा है। यहाँ करते हैं परंतु वो तो बाकी सब में आ गए, यानी सब करते ही रहेंगे उसको। अब तिर्यंच गति में, ये बहुत सारी ओग की बात तिर्यंच गति में घटित होगी वो एक इंद्रियों की अपेक्षा। आहार शरीर नाम कर्म के संक्रामक स्तोक है, सम्यक्त्व के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, मिथ्यात्व के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक विशेष अधिक है। जिसे ओग के समान लिया, देव गति के संक्रामक असंख्यात गुणे लिए, यहाँ लिया न, नरक गति के संक्रामक विशेष अधिक लिए, वैकृत शरीर के संक्रामक उससे विशेष अधिक लिए, नीच गोत्र के संक्रामक अनंत गुणे हैं, यानी ओक के समान अभी तक तो चल रही बात। असाता वेदनीय के संक्रामक संख्यात गुणे हैं, साता वेदनीय के संक्रामक संख्यात गुणे हैं, उच्च गोत्र के संक्रामक विशेष अधिक है, मनुष्य गति के संक्रामक विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक विशेष अधिक है और शेष कर्मों के संक्रामक तुल्य व विशेष अधिक है। ओग में क्या देखा था, यश कीर्ति के लिए, फिर आठों कषाय के लिए, क्योंकि उसमें तो जहां जहां वो क्षय होता है उसकी अपेक्षा वहां ली थी, इसलिए उसमें हीना दिखता आगे चलकर बताई थी। यहाँ बाकी सबको शेष तुल्य में ले लिया। इस प्रकार तिर्यंच गति में संक्रम दंडक समाप्त हुआ। अब देव गति में संक्रम के अल्प भूत्व की प्ररूपना नरक गति के समान है। अब आगे मनुष्यों में आहार शरीर नाम कर्म के संक्रामक स्तोक है, मिथ्यात्व के संक्रामक संख्यात गुण है, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य सम्यक तो प्राप्त करेंगे तो वो संख्यात होंगे। पहले मिथ्यात्व के लिए, फिर सम्यक्त्व के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। देखो देखो, मिथ्यात्व के संक्रामक तो सम्यक दृष्टि थे, वो पर्याप्तों में ही हो सकते थे, और सम्यक्त्व के संक्रामक जो है वो मनुष्य अपर्याप्त में भी हो गए। वो असंख्यात गुणे लिए, सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक विशेष अधिक है, क्योंकि वो भी सम्य दृष्टि भी है और मनुष्य अपर्याप्त में जाने पर भी है। देव गति के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, नरक गति के संक्रामक विशेष अधिक है, वैक्रिक शरीर के संक्रामक विशेष अधिक है, नीच गोत्र के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, असातावेदने के संक्रामक उससे संख्यात गुणे हैं, सातावेदने के संक्रामक संख्यात गुणे हैं, उच्च गोत्र के संक्रामक विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक विशेष अधिक है। आगे की प्ररूपणा ओक के समान है, मैंने बताया ना, वो तो श्रेणी में जहाँ जो नाश होता है सत्ता में उसकी अपेक्षा अल्पभूत बताया। इस प्रकार मनुष्य गति में संक्रम दंडक समाप्त हुआ। अब द्वींद्रिय जीवों में यानी एकेंद्रिय की त्रियंच गति के समान तो हो जाएगी शायद, इसलिए द्वींद्रिय की अलग बात बता रही। आहार शरीर के संक्रामक जीव संख्यात है जो स्तोक है, सम्यक्त्व के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, यानी मिथ्यात्व में आए हुए जीव लेना है। सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक विशेष अधिक है। अब यहाँ सम्यक तो नहीं है तो मिथ्यात्व के संक्रामक नहीं होंगे। मिथ्यात्व का संक्रमण तो सम्यक दृष्टि के होता है। देव गति के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, नरक गति के संक्रामक विशेष अधिक है, वैक्रिक शरीर के संक्रामक विशेष अधिक है, नीच गोत्र के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, ओग में अनंत गुणे कहते थे क्योंकि वहां एक इंद्रियों को इंक्लूड कर दिया था, यहां द्विंद्रिय है ही असंख्यात इसलिए उसको असंख्यात गुणे कह दिया। असाता वेदनी के संक्रामक संख्यात गुणे हैं, साता वेदनी के संक्रामक संख्यात गुणे हैं, उच्च गोत्र के संक्रामक विशेष अधिक है, और शेष कर्मों के संक्रामक तुल्य व विशेष अधिक है। तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेन्द्रिय जीवों में संक्रम के अल्प बहुत्व की प्ररूपणा द्विंद्रिय जीवों के समान है। भुजाकार, पदनिक्षेप और वृद्धि संक्रम एक एक प्रकृति के संक्रम में नहीं है। देखो क्या कहना चाहते हैं, भुजाकार कब होगा, जब अधिक होगा, तो अल्पतर कम होगा। हम एक एक प्रकृति की बात उठा रहे हैं तो उसमें अधिक और कम का सवाल क्या है, नहीं समझे। जैसे यहाँ कह रहे हैं सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है तो उसमें अधिक क्या करना है, कम क्या, यहाँ प्रदेशों की बात होगी तो अल्पभूत यानी हीनाधिकता हो सकती है, भुजाकार अल्पतर। एक प्रकृति में अल्पतर भुजाकार नहीं हो सकता, हाँ वक्तव्य हो सकता है परंतु उसकी बात यहाँ नहीं है। तो भुजाकार ही नहीं है तो उसमें वृद्धि उत्कृष्ट है कि जघन्य है कि उसका भी सवाल नहीं आता। अभी प्रकृति स्थान संक्रम में, अभी ये स्थान में प्रकृति स्थान यानी एट ए टाइम कितने प्रकृतियों का संक्रम होता है उसको प्रकृति स्थान कहेंगे। जैसे ज्ञानावरण में पांचों का ही एक स्थान है, सर्वत्र पांचों का ही संक्रमण पाया जाएगा, उसको स्थान कहेंगे। देखो प्रकृति स्थान संक्रम में स्थान समुत्कीर्तना की प्ररूपणा करते, यानी कौन कौन से स्थान है वो पहले बताएंगे। ज्ञानावरण के प्रकृति संक्रम का एक ही स्थान है, यानी कितने प्रकृतियां संक्रमित होती है, तो 5 सर्वत्र, तो उसका एक ही स्थान है, यानी उसमें अन्य अन्य पॉसिबिलिटीज नहीं है। इस एक स्थान के द्वारा सब अनुयोग द्वारों का ले जाना चाहिए। दर्शनावरण के 2 स्थान है, यथा सब अनुयोग द्वार ने उसका स्वामी, उसका काल, उसका अल्पभूतव भंग विषय, वो सब अनुयोग द्वार उसमें समझना चाहिए। दर्शनावरण के 2 स्थान है, किसके संक्रमण के, 9 प्रकृतियों का संक्रम और 6 प्रकृतियों का संक्रम। तो 9 का कहां पर होगा और 6 का कहां पर होगा?
9 का 1 से 9 को रखा,
हाँ, जब तक सत्ता है तो 9वें गुण स्थान में उसका क्षय हो जाता है, क्षपक 9वें में। 9 कहने से 11वें तक उसका सत्ता पड़ेगी, 10वें तक उसकी भी हो जाएगी, कौन से उपशम वाले 10वें में। इन 2 स्थानों के द्वारा समझ में आती है, 6 प्रकृति का स्थान कब होगा? क्षपक 9वें गुण स्थान में 3 का क्षय हो जाता है, तो सत्ता में 6 ही पड़ी रहती है, उसका संक्रमण चलेगा। इन 2 स्थानों के द्वारा 24 अनुयोग द्वारों, पहले 24 अनुयोग द्वार यानी उसकी समुत्कीर्तना 2 स्थान होते हैं, फिर भी उसको स्वामित्व, एक जीव की अपेक्षा काल, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय, उसका काल, उसका अंतर, उसके अल्पभूत, ये सब बताएंगे। भुजंगार कहने से क्या होगा? वही मैं पूछती हूँ, भुजगार नहीं होगा, पर भुजगार अल्पतर में अल्पतर होगा, हाँ। और उसमें अवक्तव्य
होगा,
11वें में से 10वें में आएगा तब। पद निक्षेप और वृद्धि संक्रम को भी ले जाना चाहिए। मोहिनी की स्थान समुत्कीर्तना जैसे कषाय पाहुड़ में विस्तार से की गई है, वैसे यहाँ भी उसे करना चाहिए। कषाय पाहुड़ यानी हमने जयधवला में देखा था कि कहाँ कितने प्रकृतियां किसमें संक्रमित होती है, कौन कौन संक्रमित होती है। अभी दर्शन मोहिनी में तो हमने देखा ना, मिथ्यात्व का संक्रमण कहाँ है? समय दर्शन, समय दृष्टि के है, पहले 3 गुण स्थान में नहीं है। समय मिथ्यात्व का समय दृष्टि के भी और पहले वाले के भी है, और समय प्रकृति का पहले गुण स्थान में है, जब तक उसकी सत्ता बनी रहेगी। तो मोहिनी की स्थान समुत्कीर्तना जैसे कषाय पहाड़ में विस्तार से की गई है, वैसे यहाँ भी उसे करना चाहिए। ये कहना चाहिए करके छोड़ दिया उन्होंने। ने उसके कितने कितने के स्थान हो गए, होगा ना, सब होगा, इसीलिए उन्होंने विस्तार से वो छोड़ दिया, सब इसका स्वामित्व हो गए, सब कर छोड़ देना। वेदनीय गोत्र और अंतराय का एक ही स्थान है, यानी एक प्रकृति वाला एक ही स्थान है, या तो साता का होगा या तो असाता का होगा। नाम कर्म की पृथक पृथक पिंड नाम प्रकृतियों की स्थान समुत्कीर्तना करना चाहिए, वह इस प्रकार से है। गति नाम कर्म संबंधी 1, 2, 3 और 4 का संक्रमण होता है। उद्वेलना के आश्रय से जिन पिंड प्रकृतियों में संक्रम स्थान है, उनके द्वारा सब अनुयोग द्वारों को ले जाना चाहिए, इस प्रकार प्रकृति संक्रम समाप्त होगा। नाम कर्म में, गति नाम कर्म में 1 का संक्रमण कब होगा? वही सोच रहे ब्रह्मा, जहाँ सत्ता है वहाँ संक्रम है, तो एक ही सत्ता गति की कब होगी? अग्नि का एक, वायु का एक में, जहाँ देव गति की, नरक गति की और मनुष्य गति की उद्वेलना हो चुकी है, ऐसे जीव के गति एक ही गति का नहीं, 3 गति की संक्रमण हो रहा है। क्यों इस गति के लिए गति की सत्ता की जरूरत नहीं है, अन्य नाम कर्मों की जरूरी है। अभी तो हमने नक्की किया, दो अग्नि का एक वायु का एक में तीन गति की सत्ता है, अन्य तीन गति की सत्ता नहीं है, यानी वो वैसे की सत्ता वाला। यानी मनुष्य गति की भी उद्वेलना की है, यानी देव गति नारद गति और मनुष्य की उसकी उद्वेलना की है। हाँ, इसलिए तिरंज गति का ही संक्रमण करेगा। देखो देखो, ये पहले व्यासी की सत्ता वाला लिया, अभी दो में अभी मनुष्य गति की उद्वेलना नहीं की है, देव गति और नरक गति की उद्वेलना की है, और दो गति अब सत्ता में पड़ी है। तीन की बात है, देव गति का ही केवल उद्वेलना की है, अभी नरक गति सत्ता में पड़ी है। वो दो वाला जो है नरक गति तिरंज गति की सत्ता नष्ट हुए उसके बाद वो कह सकते हैं। ये 84 वाला होगा या 90 गुणस्थान वाले होगा। यह 84 की सत्ता वाला, तीन के करने वाला कौन है, देव की उद्वेलना हो गई है, यानी 88 की सत्ता वाला। और चारों का संक्रमण होता है वो तो बाकी सभी चीज। तो उद्वेलना के आश्रय से जिन पिंड प्रकृतियों में संक्रम स्थान है, क्योंकि इसमें संक्रम स्थान होते हैं, गति नाम कर्म में संक्रम स्थान है, एक गति का संक्रमण, दो गति का, तीन गति का, चार गति का, इस तरह से समझना। वैसे जाति नाम कर्म में कोई उद्वेलना नहीं होती है, तो उसमें पांचों ही जातियों का संक्रमण वाला एक ही स्थान होगा। समझ में आती है बात। अब स्थिति संक्रम दो प्रकार का है, ये कल पढ़ेंगे, अभी 10 बजने को आए ना। चावाणी के ज्ञान